बस करो सुभाष, और कितना नाटक करोगे तुम? तुझे लगता होगा कि मैं बेवकूफ हूं जो तेरे इस धोखे के बाद भी दोबारा तुझ पर विश्वास करने की गलती करूंगा, पर मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूं कि आंखों के सामने जो सच्चाई मुझे दिख रही है उसे झुठलाकर तुझ जैसे धोखेबाज पर विश्वास करने की गलती दोबारा करूं। अब मैं तेरी बातों में फंसने की गलती दोबारा नहीं करूंगा। तुझ जैसे धोखेबाज के लिए अब ना तो मेरी जिंदगी में कोई जगह है और ना ही अब मेरे इस थिएटर में ही तेरे लिए कोई जगह है। तूने मेरी दोस्ती का जो सिला दिया है उसे मैं ताउम्र याद रखूंगा। तूने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया, अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है तुझे। तेरा तो बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर, आखिर तूने दोस्ती जैसे पवित्र रिश्ते पर से मेरा विश्वास जो उठा दिया। अब दोबारा कोई दोस्त के रूप लेकर मुझे छल नहीं सकेगा। मैं तुझे और तेरे दिए इस धोखे को कभी भुला नहीं सकूंगा। एक वक्त था जब तेरी दोस्ती में मैं अपनी जान भी हंसते हंसते कुर्बान कर सकता था, पर अब मैं तुमसे इतनी नफरत करता हूं कि अगर तू अभी यहां से नहीं गया तो मुझे नहीं पता कि मैं कर जाऊं तेरे साथ। चला जा मेरी नजरों से दूर, और अगर तू चाहता है कि मैं तेरी जान ना लूं तो दोबारा कभी मुझे अपना चेहरा भी मत दिखाइयो। दोस्त कहा था तुझे, वो भी दिल से, इसलिए तेरे खिलाफ सबूत होने के बावजूद मैं तुझ पर केस नहीं कर रहा, यूं ही छोड़ रहा हूं तुझे। पर अगर तू दोबारा मेरे सामने आया तो तेरे दिए इस धोखे की सजा जरूर दूंगा मैं तुझे। अब चला जा यहां से, मुझसे और मेरी जिंदगी से निकल जा, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। अमरजीत जी ने गुस्से से उन्हें थिएटर के बाहर धक्का दे दिया। उनकी आंखों में अपने लिए नफरत देखकर सुभाष जी स्तब्ध रह गए थे। उन्होंने उनको समझाने की बहुत कोशिश की, पर अमरजीत जी ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और ना ही उन पर विश्वास किया। उन्हें थिएटर से बाहर निकालने के बाद वो गुस्से में अपनी कार लेकर वहां से निकल गए। कुछ देर बाद उनकी कार बार के सामने रुकी। सुभाष जी का दिया धोखा वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। दर्द असहनीय था, जिसे भुलाने के लिए वो ड्रिंक पर ड्रिंक करने लगे। सारी रात वो वहीं बैठे शराब पीते रहे। सूरज निकलने के बाद वो नशे में धुत अपने मेंशन पहुंचे और रूम में आए तो पूरा रूम खाली था। अभी सुबह के 3 ही बज रहे थे और वो पूरी तरह नशे में धुत थे। किसी बात का होश ही नहीं था उन्हें। बेड पर गिरते ही वो नींद की आगोश में चले गए। उसके बाद उनकी नींद तब खुली जब 7 साल का अर्जुन उनकी बाँह हिलाते हुए उन्हें जगाने की कोशिश कर रहा था। वो अब भी नशे में थे और अर्ध बेहोशी की हालत में उन्हें कुछ शब्द सुनाई दे रहे थे। डैड वेक अप, डैड उठिए ना, डैड, डैड मॉम कहीं भी नहीं मिल रही, गुड़िया भी नहीं है, डैड उठिए ना। नशे में उनके कानों में अर्जुन के कहे शब्द गूंजने लगे थे, और जैसे ही उन्हें उसकी बातों का मतलब समझ आया वो एकदम से उठकर बैठ गए। देवकी जी और आद्या के ना मिलने की खबर ने उनका सारा नशा उतार दिया था। उन्होंने घबराई नजर से अर्जुन को देखते हुए पूछा, अर्जुन बेटा क्या कह रहे हैं आप? देवकी जी नीचे ही होंगी बेटा। अर्जुन जो पूरे घर में अपनी माँ और बहन को ढूंढ चुका था, अब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, नहीं डैड, मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया पर मम्मा और गुड़िया कहीं भी नहीं है। अमर जी के चेहरे पर घबराहट के भाव भराए। उन्होंने अर्जुन को संभाला और पूरे घर में ढूंढने पर भी जब देवकी जी और आद्या उन्हें नहीं मिले तो उन्होंने सर्वेंट से पूछा, पर उन्हें भी कुछ पता नहीं था। उन्होंने गेट पर मौजूद गार्ड से पूछा, तब उन्हें पता चला कि बीती रात करीब 10 बजे देवकी जी आद्या से साथ विला से बाहर निकल गई थी। गार्ड ने यह भी बताया कि उन्होंने देवकी जी को रोकने की कोशिश भी की थी पर वो रुकी नहीं। फिर उन्होंने अमर जी को फोन लगाया तो उनका फोन भी बंद आ रहा था। अमर जी का सर घूमने लगा ये सब सुनकर। एक रात में उनकी जिंदगी बिखर सी गई थी, पहले सुभाष जी का धोखा और अब देवकी जी का यूं बिना बताए चले जाना। उनकी जिंदगी के 2 अहम इंसानों को एक रात ने उनसे छीन लिया था। पहली बार वो खुद को इतना बेबस और अकेला महसूस कर रहे थे। सब बताते हुए अमर जी की आंखों में नमी तैर गई। उस वक्त को याद करते हुए उन्होंने वो दर्द एक बार फिर महसूस किया था। उनका गला रुंध गया तो वो खामोश हो गए। कुछ देर बाद अपनी भावनाओं को संभालने के बाद उन्होंने आगे कहना शुरू किया, देवकी के जाने के बाद हमारे लिए सब अकेले संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। पहले सुभाष के धोखे की वजह से हमने उन्हें खुद से दूर कर दिया और फिर देवकी बिना कुछ बताए हमें अकेला छोड़कर जाने कहाँ चली गई थी। हम खुद को ही नहीं संभाल पा रहे थे, उस पर आपकी जिम्मेदारी और इन्वेस्टर्स का दबाव। हमने देवकी को ढूंढने के लिए पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई और क्योंकि हम पर काम का बहुत प्रेशर था और देवकी के बिना आपको संभाल पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए हमने आपको आपके मामा के घर भेज दिया। सिर्फ 1 हफ्ता था हमारे पास, अगर हम उसे 1 हफ्ते में कुछ नहीं करते तो हम रोड पर आ जाते, इसलिए हमने अपना सारा ध्यान काम पर लगा दिया। जब हम वापस थिएटर गए तो हमारे असिस्टेंट प्रवीण ने न्यू स्क्रिप्ट तैयार कर दी थी, हमने उसी पर काम शुरू कर दिया। 1 हफ्ते बाद प्ले हुआ जिसने हमें नई बुलंदियों तक पहुँचा दिया। उस प्ले के बाद प्रवीण अचानक ही कहीं चला गया। हमने थिएटर बंद कर दिया
और अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया। उस दौरान हम अपने काम और देवकी को ढूंढने में इतने व्यस्त हो गए कि सुभाष और उसके परिवार की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं गया, और उनके दिए धोखे की वजह से हमने कभी खुद से उनके बारे में कुछ पता लगाने की कोशिश तक नहीं की। आप यहाँ नहीं थे, देवकी और गुड़िया दोनों हमें छोड़कर जा चुके थे। जिस दोस्त को हमने अपना भाई माना उससे भी नफरत करने लगे थे हम, और सबकी याद से दूर भागने के लिए हमने खुद को पूरी तरह से काम में डुबो दिया था। उस एक रात ने हमसे हर उस इंसान को छीन लिया जिनके बिना रहने की हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। हमें आज तक नहीं पता कि क्यों देवकी बिना कुछ बताए हमें छोड़कर चली गई, और जो शान ने कहा उसके बाद हम खुद नहीं समझ पा रहे कि ये सब हमारे साथ हो क्या रहा है। जहां तक हमें पता है, हमसे सिर्फ एक गलती हुई थी कि हमने उन सबूतों पर विश्वास किया जो हमें सुभाष के खिलाफ दिखाए गए, पर अपने दोस्त पर भरोसा नहीं किया हमने। वो कहता रहा कि उसने हमें धोखा नहीं दिया, कोई है जो उसे फंसाने की और हमारी दोस्ती में दरार डालने की कोशिश कर रहा है, पर उस वक्त हमने गुस्से में आकर उनकी ना तो कोई बात सुनी और ना ही उन पर विश्वास किया। लेकिन अब हमें भी लगता है कि कोई तो था जिसने इतनी गहरी साजिश की हमारे खिलाफ, हमें सुभाष से नफरत करने पर मजबूर किया और वही सुभाष के साथ भी किया। कोई तो था जिसने सब कुछ किया और उसमें फंस हम और सुभाष गए। हमें नहीं पता कि आप हमारा विश्वास करेंगे या नहीं, पर हम आपसे इतना जरूर कहेंगे कि हम आपकी मॉम के प्रति पहले भी वफादार थे और आज भी लॉयल हैं। हमारी जिंदगी में उनके अलावा कभी कोई दूसरी औरत नहीं थी। हम उन्हें धोखा देने के बारे में सोच ही नहीं सकते, और ना ही हमने भाभी के साथ कुछ गलत किया है। हमारे उनके साथ कोई नाजायज संबंध नहीं था। भले ही तब हम गुस्से में थे, सुभाष से नाराज थे, पर हमने उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी। अब अगर आपको हम पर विश्वास करना है तो कीजिए, वरना आप भी आजाद हैं। जैसे पहले देवकी हमें गलत समझकर हमें छोड़कर चली गई, आप भी चली जाइए। जैसे आज हमारी गुड़िया हमसे नफरत करती है, आप भी नफरत कीजिए हमसे। आप भी हमें दोषी मान लीजिए, पर हम जानते हैं कि हम गुनाहगार नहीं हैं, और अपनी आखिरी सांस तक हम खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करते रहेंगे।
अगर हम अपनी कोशिश में कामयाब रहे तो आपकी और आरवी के साथ साथ शान की नफरत भी खत्म हो जाएगी, और अगर हम खुद को बेगुनाह साबित किए बिना मर जाएं, तो एक एहसान कर दीजिएगा हम पर कि हमारी अर्थी को कंधा दे दीजिएगा।